क्या आप जानते हैं कि रैप्चर का समय कौन सा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 1 से 11। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक को ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। विवरण। इस अध्याय का मुख्य आकर्षण वचन 7 में मिलता है, वरन सातवें स्वर्गदूत की तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। दूसरे शब्दों में रैप्चर इस समय घटित होगा। वचन 1। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। अध्याय 10 में प्रकट होने वाला शक्तिशाली स्वर्गदूत परमेश्वर का कार्य करने वाला है, जो आने वाले उसके कार्य की गवाही देता है। इस स्वर्गदूत की उपस्थिति यह दिखाने के लिए है कि परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य कितनी महान है। यह दिखाने के लिए भी है कि परमेश्वर इस संसार के समुद्र को नष्ट कर देगा और पवित्र लोगों को स्वर्ग में पुनरुत्थित और रैप्चर करेगा। वचन 2 और 3। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए। परमेश्वर सब कुछ अपनी योजना के अनुसार करता है। अंतिम दिन आने पर वह भूमि और समुद्र दोनों को नष्ट कर देगा। दूसरे शब्दों में हमारा प्रभु पहले समुद्र और पहली भूमि को नष्ट कर देगा। यह भाग जैसे परमेश्वर ने योजना बनाई है, वैसे ही सभी चीजों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की अदम्य इच्छा और उसके कार्यों की पूर्ति को दर्शाती है। बाइबल में संख्या 7 पूर्णता का अर्थ बताती है। परमेश्वर ने इस संख्या का उपयोग तब किया जब उसने अपनी सभी कार्यों को पूरा करने के बाद विश्राम किया। इसी तरह यह भाग हमें बताता है कि परमेश्वर अंत के समय में बहुतों को उनके विनाश से बचाएगा, लेकिन दूसरी ओर निश्चित रूप से इस दुनिया को नष्ट कर देगा। वचन 4। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। परमेश्वर ने यूहन्ना को आज्ञा दी कि वह उन सात गर्जनों को दर्ज न करे ताकि संतों के रैप्चर को उन लोगों से छिपाया जा सके जिनका उद्धार नहीं हुआ है। कभी कभी परमेश्वर अपने कामों को अविश्वासियों से छुपाता है क्योंकि वे परमेश्वर के शत्रुओं के रूप में उसके संतों से घृणा करते हैं और उन्हें सताते हैं। नूह के समय में भी जब परमेश्वर ने पानी से दुनिया को नष्ट कर दिया, उसने आने वाली बाढ़ को केवल नूह पर प्रकट किया। अभी भी परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार का संसार भर में प्रचार करता है और स्वर्ग का राज्य उन लोगों को देता है जो इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन इनके अलावा जो सच्चा विश्वास रखते हैं उन्होंने किसी और पर यह प्रकट नहीं किया कि रैप्चर कब आएगा। धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य में एक नया संसार बनाया है और वह उनके साथ उसमें रहना चाहता है। वचन 5 और 6। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न लगेगी। इन सब बातों को परमेश्वर के नाम से शपथ खाई जा सकती है क्योंकि हर चीज में आखिरी शपथ व्यक्ति अपने नाम से नहीं लेकिन किसी महान व्यक्ति के नाम से ली जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर अंतिम समय के संतों और उन सभी के लिए जो पहले से उनके संत बन चुके हैं अंतिम उत्तरदायी है। यहां शक्तिशाली स्वर्गदूत सर्वशक्तिमान द्वारा शपथ लेता है कि रैप्चर निश्चित रूप से आएगा। यह शपथ हमें बताता है कि परमेश्वर नए स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करेंगे और इस नई दुनिया में अपने संतों के साथ रहेंगे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर नई दुनिया के निर्माण में देर नहीं करता है, लेकिन जल्द ही इसे अपने संतों के लिए पूरा करेगा। वचन सात, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यह वचन हमें बताता है कि जब अंतिम क्लेश में सातवीं तुरही बजती है तो सभी संतों का रैप्चर किया जाएगा। इस धरती पर लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का होगा है कि इस संतों का रैप्चर कब होगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 हमें बताता है, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यहां वाक्यांश परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार को अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार पानी और आत्मा का सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है और जो कोई इसमें विश्वास करता है वह प्रायश्चित और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में प्राप्त करता है, उसी प्रकार संतों का रैप्चर भी निश्चित रूप से तब आएगा जब सातवीं तुरही बजेगी। सात तुरहियों में से छठी विपत्ति समाप्त होने के बाद जब मसीह विरोधी जगत में प्रकट होता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा और इसके बाद सबसे जानवर का चिन्ह प्राप्त करने की मांग करेगा, तब संतों को शहीद किया जाएगा। कुछ ही समय बाद जब सातवां स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाता है, शहीद और जीवित संत दोनों जिन्होंने अपने विश्वास की रक्षा की थी एक साथ पुनरुत्थित हो रैप्चर किए जाएंगे। तब सात कटोरे की विपत्तियां मनुष्य जाति पर की आखिरी विपत्ति शुरू हो जाएगी। इस समय तक संत पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, परंतु उनके रैप्चर के बाद स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे। संतों को पता होना चाहिए कि उनका रैप्चर तब होगा जब सातवां स्वर्गदूत आखिरी तुरही बजाएगा। प्रेरित पौलुस भी हमें पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में बताता है कि प्रभु स्वर्ग से एक प्रधान दूत की तुरही के साथ उतरेगा। बहुत से मसीही सोचते हैं कि रैप्चर होने पर प्रभु इस धरती पर आवृत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रैप्चर होता है तो हमारा प्रभु इस धरती पर नहीं बल्कि हवा में आएगा। दूसरे शब्दों में वह संतों को ऊपर उठाएगा और उन्हें हवा में ग्रहण करके रैप्चर को पूरा करता है। इस प्रकार यह मसीही जो गलती से सोचते हैं कि सच्चे संतों का रैप्चर आने पर प्रभु इस धरती पर उतर आएंगे, उन्हें अपनी गलत समझ को त्याग देना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए कि सत्य को जानना चाहिए और ठीक से विश्वास करना चाहिए कि जब सातवां स्वर्गदूत अपनी तुरही फूकेगा तब रैप्चर होगा। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि यहां परमेश्वर का गुप्त मनोरथ संतों के रैप्चर को संदर्भित करता है जो सातवीं तुरही की विपत्ति की ध्वनि के साथ आएगा। अब संक्षेप में, परमेश्वर पहली दुनिया को नष्ट कर देता है और दूसरी दुनिया बनाता है। यह परमेश्वर के लिए है कि वे उन लोगों के साथ रहे जो पृथ्वी पर रहते हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया था, और साथ ही उन सभी वायदों को विश्वास योग्यता से पूरा किया जा सके जो सर्वशक्तिमान ने अपने लोगों से किए थे। यह पूरे ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा है जिसे उन्होंने संतों के लिए स्वयं निर्धारित किया है। जब स्वर्गदूत सातवीं तुरही फूकेगा तब सात तुरहियों की विपत्तियां समाप्त हो जाएगी और सात कटोरे की अंतिम विपत्ति आ जाएगी। वचन हमें बताता है, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यहां परमेश्वर का गुप्त मनोरथ यह है कि सातवें दूत की तुरही की ध्वनि के साथ संतों का रैप्चर किया जाएगा। संत अभी इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक नई बेहतर दुनिया में रहने के लिए उन्हें शहीद होना चाहिए, पुनरुत्थित होना चाहिए और रैप्चर होना चाहिए। केवल तभी उन्हें प्रभु के साथ मेमने के विवाह भोज में आमंत्रित किया जाएगा और परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस 1000 साल के राज्य के बाद मसीह विरोधी शैतान और उसके सभी अनुयायियों को परमेश्वर का अनंत दंड प्राप्त होगा, और तब वे संतों को उनके अनंत आशीर्वाद के स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने का आशीर्वाद मिलेगा। यही परमेश्वर का गुप्त मनोरथ है। हम केवल उन लोगों के लिए इस रहस्य को उजागर करने के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रख सकते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास है। परमेश्वर हमें बताता है कि जब सातवां स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाएगा तब वह इन सभी वायदों को पूरा करेगा। वचन 8, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था वह फिर मेरे साथ बात करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर के संतों और सेवकों को अंतिम दिन आने तक पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करते रहना चाहिए। यह सुसमाचार पापों की क्षमा, शहादत, पुनरुत्थान, रैप्चर और मेमने के विवाह भोज की सच्चाई के बारे में है। संतों और परमेश्वर के सेवकों के लिए अंत तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें पहले महाक्लेश के आगमन से पहले अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को खाना चाहिए। परमेश्वर हमसे दो तरह के विश्वास की मांग करते हैं। पहला है नया जन्म प्राप्त करने का विश्वास और दूसरा है अपने सच्चे विश्वास की रक्षा के लिए शहादत को गले लगाने का विश्वास। वचन 9। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। परमेश्वर के संतों और सेवकों को पहले इस परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए और फिर इसे अन्य लोगों तक फैलाना चाहिए। यह वचन हमें सिखाता है कि यद्यपि परमेश्वर के वचन में विश्वास करने वाले के हृदय मधुर होते हैं, फिर भी खोई हुई आत्माओं को विश्वास के इस वचन का प्रचार करना बलिदान के साथ इतना आसान काम नहीं है। यही परमेश्वर यहां हमें दिखाता है। वचन 10। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो वह मेरे पेट में कड़वा हो गया। जब यूहन्ना ने विश्वास से परमेश्वर का वचन खाया तो उसका हृदय आनंद से भर गया। परंतु जो लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते उन्हें परमेश्वर के वचन द्वारा प्रमाणित सत्य का प्रचार करने में यूहन्ना को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वचन 11। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। संतों को फिर से सभी को भविष्यवाणी करनी चाहिए कि पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर की आशीष आती है। उन्हें फिर से भविष्यवाणी करनी चाहिए कि अंत के समय में इस दुनिया के लिए हमारे प्रभु का उद्देश्य है कि हर कोई पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करे। परमेश्वर ने यूहन्ना को भविष्यवाणी करने की जो आज्ञा दी वह सत्य के वचन का प्रचार करना है कि एक नया संसार जल्दी ही आ रहा है जो परमेश्वर के द्वारा लाया जाता है, और यह है कि जो कोई उसमें प्रवेश करना चाहता है उसे पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके धर्मी ठहराया जाना चाहिए। इस काम के लिए संतों और परमेश्वर के सेवकों को शुरू से ही परमेश्वर के वचन का फिर से प्रचार करना चाहिए ताकि इस दुनिया में हर किसी को विश्वास हो जो उन्हें हमारे प्रभु के राज्य में प्रवेश करने और वहां रहने की अनुमति देगा।